हेलो जी हाँ 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 एक मिनट होल्ड करें डॉक्टर साहिबा, आपका टेलीफोन है।
शुक्रिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेहजाद, यहाँ क्या कर रहे हो? मोबाइल क्यों स्विच ऑफ किया था? अबू नहीं सो रहे, उनको दिन का इंजेक्शन लगाया गया है। अच्छा रुको, मैं भी आती हूँ नीचे। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। उनकी तबीयत कैसी है?
अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, कल डिस्चार्ज हो जाएंगे। वैसा तुम उस लड़के सुहेल के पीछे तो नहीं गए थे ना?
नहीं, नहीं गया। क्यों?
अबू फिक्रमंद हो गए थे, बेहतर है कि तुम खुद को इन मसलों में न उलझाओ।
क्यों?
कह रहे थे लड़का खतरनाक है, खुदा ना खासा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है।
अच्छा
बेहजाद, बेहजाद तुम ठीक हो?
नहीं, ठीक नहीं हूँ। कल रात से अब तक नहीं सोया हूँ, जाके कुछ आराम करता हूँ। शब बख़ैर।
शब बख़ैर।
अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है,
ताया जान घर पर आ गए हैं और बिल्कुल भले चंगे हो गए हैं।
अस्सलाम वालेकुम।
सलाम फखरे जमाना, पनाहे बेपनाहान और बुजुर्गे जमान की सलामती के लिए सलावत पढ़िए जोर से।
मनोज आ जाओ अंदर ना तुम भी।
चले आप लोग तशरीफ ले चले, अंदर चले, मैं भी आता हूँ। हेलो, तुम कहाँ हो, यहाँ आए क्यों नहीं? अरे बुरी बात है, सब यहाँ मौजूद हैं। अरे अभी तो कुछ भी मालूम नहीं हुआ है ना?
ये लीजिए मेरे ख्याल से आप जाके अपने कमरे में आराम कर ले।
यहीं ठीक हूँ मैं।
लीजिए चाय।
सुरूर साहिबा, आपके रिश्तेदार क्यों नहीं आए?
हिसाम साहब ने पाबंदी लगाई, कहा आपको तकलीफ होगी।
ये लीजिए।
बहुत शुक्रिया निगार बेटा।
बेहजाद कहाँ है, वो आया क्यों नहीं?
इतना मसरूफ था कि एक मिनट अपने ताया अब्बू को देखने नहीं आ सकता था?
नहीं
नहीं नहीं, नहीं ताई जान ऐसी बात नहीं है, वो तो सिर्फ बेहजाद जो है ना वो...
हाँ सिर्फ असल मसरूफ है ना, कंपनी के खसारे, बाउंस हो चुके चेकों और इसी तरह के और हजार मसाइल हैं। अलबत्ता फिर भी उन्होंने बहुत ताकी से कहा कि कारखाने की मुश्किलात के बारे में हिसाम साहब को कुछ ना कहूँ और मैंने नहीं बताया। बहुत शुक्रिया, अलबत्ता जब तक पूछा नहीं था उस वक्त।
हिसाम साहब, मेरा बेटा आपके सामने आने से शर्माता है, खुद भी बहुत परेशान है, کیونکہ سہیل کی سفارش اس نے کی تھی، اسی لیے اس کے بعد جو واقعات پیش آئے ان کی وجہ سے شرماتا ہے۔
نہیں، ایسا نہیں ہے۔
کیا ہوا ہے؟
بیٹھو تم۔
جی ٹھیک۔
اس کا اخلاق مرحوم حبیب کی طرح ہے۔
میں
بہزاد کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے اب تک ریٹائرڈ ہو جانا چاہیے تھا اور خاندان کے کسی فرد کو کارخانے کے امور سونپ دینے چاہیے تھے۔ بہزاد سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ تم تو جانتی ہو کہ سہیل نے ہمارا کتنا نقصان کرایا ہے۔ تم نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ میرا ہاتھ تنگ ہے؟
صاحب، میں نے سوچا شاید آپ خود ہی اسے بات کرنا چاہتے ہو، کیونکہ
تمہیں سہیل کے پیچھے لگایا تھا۔ کیا ہوا؟
لگا ہوا ہوں، میں نے سب کو کہہ دیا کہ جس نے بھی اس بے غیرت سہیل کو دیکھا فوراً مجھے بتائے تاکہ اسے پکڑ لیں۔ صاحب آپ بالکل بے فکر رہیے، مطمئن رہیے، میں یہ کام کر کے رہوں گا۔
معاف کیجیے گا، میں تھکا ہوا ہوں، آرام کرنا چاہتا ہوں، معاف کیجیے گا۔
السلام علیکم۔
السلام علیکم جناب بخش صاحب،
کیسے ہیں آپ؟
ٹھیک
ہوں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟
انجینئر ہیں نا؟
جی، وہ کمرے میں ہیں۔ بس سوری، انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو کمرے میں نہ
آئیں۔ میں بھی نہیں، کیوں؟ میں تو ان کا بہن ہوں۔
میں معذرت چاہتی ہوں، آج کل کمپنی ریلیکس نہیں ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ معاف کیجیے جو پوچھ رہی ہوں، کچھ ہوا ہے کیا؟
نہیں تو کیوں؟
اصل میں میں جب صبح کو آئی تھی تو یہ دروازہ کھلا تھا، میں سمجھی کوئی چور آ گیا ہو۔ اندر جا کے دیکھا تو فروزان فر صاحب کل رات سے یہاں سوئے ہوئے ہیں۔ آخر ایسا ہوا کیا ہے کہ وہ اتنا پریشان ہو گئے ہیں؟
کیا بتاؤں، یہ پریشانیاں، قرضے، چیک کا باؤنس ہو جانا، سب کہاں چین لینے دیتا ہے۔
سچ کہہ رہے ہیں، میری امی کہتی ہے قرض دار آدمی لنگڑے بکرے کی طرح ہوتا ہے، نہ دن کو سو سکتا ہے نہ رات۔
ہاں صحیح کہا، میں ذرا اندر جا کے دیکھوں یہ لنگڑا بکرا کیوں کل رات سے یہاں سو رہا ہے۔
ارے جہاں بخش صاحب،
معاف کیجیے گا، اپنے گھر والوں کو میرا سلام کہیے گا۔ واہ بھائی واہ، کیا سو رہے ہو؟ ارے تمہاری یہ لائٹ بھی نہیں جلتی۔ ارے السلام علیکم۔ بے ادب انسان، آپ نے سے بڑے کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ بہزاد صاحب، کل ہمیں کہاں بیچ راستے میں چھوڑ کے آپ نے اس بیوقوف دوست کے ساتھ چلے گئے تھے، اتنا نہیں سوچا کہ میں ناراض ہو جاؤں گا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا تم؟ فون کا جواب کیوں نہیں دیتے تم؟ تمہاری بیچاری ماں اور بہن صبح تک پریشانی کے مارے ایک آنکھ نہیں سو پائی۔ بہزاد تم سمجھتے کیوں نہیں؟ آخر کیا کر رہے ہو؟ اتنا نہیں سوچا کہ وہ لڑکا تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یار بہزاد سمجھا کرو، تمہارے گھر والوں نے تمہیں میرے سپرد کیا ہے۔
بیٹھو منوچہر۔
کیا؟ بیٹھو منوچہر؟ ماشاء اللہ، منوچہر صاحب بھول گئے، منوچہر صاحب، منوچہر خان، یہ سب کہتے سب بھول گئے آپ، منوچہر سیدھے۔ دیکھو اس لڑکے نے کیسا دماغ پھرایا کہ میری بے عزتی کر رہے ہو تم۔ اب گئے کہاں تم؟
اگر میں ایک بات کہوں تو کیا دو تین دن کے لیے اپنا منہ بند رکھ سکتے ہو؟
دو تین دن کیا بات کرتے ہو تم؟ کہو تو ساری عمر منہ بند کر رکھ سکتا ہوں۔ یہ لو میرا منہ بند ہے، دیکھو یہ دیکھو، میں ایک لفظ نہیں بولوں۔ اب بتاؤ کہ ہوا کیا ہے؟
اس سہیل کے پاس کچھ راز ہیں، اس کے پاس ثبوت و شواہد بھی ہیں۔
کیا جانتا ہے؟
یہ کہ میرے ابو کی موت کے باعث چچا تھے۔
کیا چچا؟ اچھا اچھا، وہ کیوں، وہ ایسا کام کیوں کر سکتے ہیں؟
سعادت آباد کی زمینوں کی وجہ سے۔
ارے چھوڑو بہزاد، تم بھی نا جو بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے تم یقین کر لیتے ہو۔ ارے اصل بات تو یہ ہے کہ سہیل نے چچا سے ناراضگی کی وجہ سے تمہارے چچا کے خلاف جھوٹی کہانی گھڑی ہے۔ تم اس کا منہ توڑنے کے بجائے اس کی باتوں پر یقین کر رہے ہو اور اپنے چچا کے خلاف کھڑے ہو۔ ارے تمہارے چچا زندہ ہے، سلامت ہے، جا کے ان سے کیوں نہیں پوچھتے؟
ایک دفعہ کلب میں سر سر سب پوچھا تھا، آئے بائیں شائیں میں جواب دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کسی کو پتہ چلنے سے پہلے خود اس بات کا اطمینان حاصل۔
اچھا اگر مطمئن نہ ہوئے تو کیا ہوگا، کیا نقصان ہوگا تمہارا؟
لگتا ہے تم میری بات سمجھ ہی نہیں رہے ہو۔ ارے مسئلہ قتل کا ہے، وہ بھی میرے ابو کے قتل کا، سمجھے؟
ارے یار وہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے فائدے کی سوچتا ہے، ایسا ہمارا لوگ دنیا میں بھرے پڑے ہیں۔ اب ایسا کرو، شیطان پر لعنت بھیجو اور چلتے ہیں چچا کے گھر، ان کی عادت کے لیے چل کے اسے مل کے آتے۔
نہیں آؤں گا، آ ہی نہیں سکتا، میرے پاؤں اس طرف نہیں اٹھ رہے۔
उसने तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया है। मेरी बात की तो जैसे अहमियत ही नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा समझते हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ जब तक बात साबित ना हो जाए मैं इस बीच किसी की साइड नहीं लूंगा। मैंने ना कुछ देखा है ना सुना है, ना कोई आया ना गया है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। बस मेरी एक बरादराना नसीहत मान लो, जो कुछ करना है उससे पहले एक माहिर आदमी से मशवरा कर लो। खुदा हाफिज।
जाते हुए लाइट भी बंद करते जाना।
ठीक है इंजीनियर साहब, सिर्फ लाइट बंद करने से पहले अपनी बेचारी माँ को एक फोन खड़का देना। सब मेरी तरह बेवकूफ नहीं है, समझते हैं कि कुछ हुआ है। अलैकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। ये क्या तरीका है, अब मेरे फोन का जवाब भी नहीं देते।
आखिर तुम कहाँ हो बहजान? आखिर सुबह से अब तक ताया ने और बहार ने 100 दफा तुम्हारा पूछा है, क्या 1 मिनट के लिए वहाँ नहीं जा सकते थे तुम? क्यों ऐसा करते हो कि हम लोगों को झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं? तुम क्या कर रहे हो?
लगता है अब तुम्हारी बारी है मानु चेहर।
मेरी बारी? भाई मेरी बारी तो उस वक्त थी जब तुम मुझे बीच रास्ते पर छोड़ के चले गए।
उसको क्यों रास्ते में छोड़ा? तुम्हें इस 420 के साथ क्या काम है बहजाद? कहाँ जा रहे हो?
अम्मी एक मिनट आइए, आपसे काम है।
हाँ हम तो गैर है ना तुम्हारे लिए। अब
क्या हुआ है बहजाद?
एक बात पूछूंगा अम्मी, सिर्फ एक लफ्ज में जवाब दीजिए, हाँ या नहीं।
ठीक है।
मेरी और सुरैया की कोई फूफी है?
क्या मतलब?
है या नहीं?
जहां तक मुझे मालूम है नहीं।
वाकई?
तुमने पूछा मैंने बताया, अब मैं पूछती हूँ तुम जवाब दो। कल से अब तक कहा थे मनुचेर को छोड़कर क्यों बीच रास्ते में चले गए? उस बदअमल लड़के के साथ कहाँ गए थे?
काम था अम्मी जान, एक प्रोजेक्ट हवाले करना था, क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, प्रेस जाके बात चीजों को चेक करना था। और हाँ, उस सुहेल ने मुझे यकीन दिला दिया है कि चचा पर हमले में उसका कोई हाथ नहीं था, लेकिन फिलहाल आप किसी को नहीं बताएंगी, खासकर चचा को।
क्यों बेटा?
वक्त आने दीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगा, मुझ पर भरोसा रखें।
ठीक है, अब उठो खाना खा लो।
मुझे इस वक्त भूख नहीं लगी है, आप खा लें।
अम्मी क्या कह रहा था वो?
कुछ नहीं, अपने काम की मुश्किलात बता रहा था।
मेरे खुदा।
मैनेजर साहब।
जी अम्मी।
जाओ उसको कमरे से निकाल के खाना खाने के लिए बुलाओ।
देखिए माफ़ कीजिएगा अम्मी, मुझे खुद भी ज्यादा हौसला नहीं है, अंदर जाके कुछ सुना दूंगा खामखा बदमजगी हो जाएगी।
अम्मी आप ठीक हैं?
हाँ ठीक हूँ बेटा।
अरे जाके लेके हो ना, देख रहे हो ना तुम अम्मी की हालत।
अरे मेरे खुदा, अगर मैं होता और 3 दिन भी कुछ ना खाता कोई मुझे ना बुलाता।
लो बेटा।
तुम 10 दिन भी ना खाओ तो कुछ नहीं होगा, मत डरो। अम्मी सच बताए ना कि क्या हुआ है?
कंपनी के हालात खराब हो गए हैं, उनके बारे में बात कर रहा था।
अरे सो क्यों रहे हो? उठो उठो, शाबाश उठो। खुदा के बंदे, समझदार इंसान जब कोई झगड़ा शुरू करता है तो उसके नफा और नुकसान के बारे में सोचता है। बहजाद भाई, अगर ये सारी बातें सही भी हों तो इसमें तुम्हारा फायदा क्या है? हाँ बोलो, क्या तुम्हारे अब्बू मरहूम जिंदा हो जाएंगे? नहीं, बईद है कि उनकी मीरास भी तुम्हें हाथ लगे। अरे भाई तुम्हें इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, تمہیں اس فلم اور دلاور کے قصے کو وسیلہ بنا کر چچا سے اپنا حق لینا چاہیے، اپنی ماں اور بہن کا حق بھی۔ اس کے بعد چچا کی لڑکی سے شادی کر کے سارا قصہ اپنے فائدے میں ختم کر لو۔ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ سمجھا رہا ہوں، تمہارے فائدے کی بات ہے۔
سنیے منوچر صاحب، مجھے گھر داماد اور طفیلی ٹائپ کے لوگ اچھے نہیں لگتے۔
مجھے تانا دے رہے ہو؟ ارے بیوقوف، میں اگر
مجھے تم سے کیا لینا دینا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، تم ہر بات کو اپنے پر کیوں لے کر بکواس کرنے لگتے ہو؟ یہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ میری ایک پھوپھی ہے، یعنی ابو کی ایک بہن ہے، جنہیں ان کی لڑائی کا پتا تھا۔
پھوپھی؟
ہاں پھوپھی۔
ارے چھوڑو اس بے غیرت دھوکے باز کو، پیسے کے خاطر جھوٹ بولا ہوگا۔
اچھا تمہارے بقول اس نے جھوٹ بھی بولا ہو، ٹھیک ہے نا، ہمیں تو اس کے بارے میں تحقیقات کرنی چاہیے نا، یہ کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ سچ۔ میں تو چچا سے اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، تمہیں ہی کرنی پڑے گی نا۔
مجھے؟ ارے میرے بھائی تم سو جاؤ، کھانے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہمیں نہ پھنسا۔
منوچر آ کر کھانا کھا لو، ٹھنڈا ہو گیا ہے۔
کہہ رہا ہے بھوک نہیں ہے، کھانا نہیں کھائے گا۔
کیا مطلب؟ جا کے لے آؤ تاکہ کھانا کھائے۔
سنو منوچر، اگر میں اس کھیل میں جیت گیا تو تمہیں بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا۔
منوچر
آ رہا ہے، آ رہا ہے، کپڑے چینج کر رہا ہے۔ اچھا بتا مجھے کیا کرنا ہوگا۔
اوپر آ جاتے،
یہ اس کا وقت نہیں ہے، پھر کبھی۔
اچھی طرح سوچ لیا ہے، فیصلہ کر لیا ہے نا؟
ہاں، میں وکیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے اس بغیر دوست دلاور کی باتوں پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنا چاہتا۔ اگر حقیقت معلوم کرنا ہے تو ہمیں حقیقی دلائل اور ٹھوس ثبوتوں کی ضرورت ہوگی۔ البتہ سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا تم اور یہ تمہارا دوست ملے ہوئے تو نہیں ہیں؟
میرا دوست نہیں ہے، تمہارے چچا کا بتخور اور بلیک میلر ہے۔ مجھے
جو بھی، مجھے یہ یقین کرنا ہے کہ تم لوگ مکر تو نہیں جاؤ گے۔ چلو بیٹھو،
مجھے ایک انٹرویو دینے جانا ہے۔
اس حلیے میں ضرور پاس ہو جاؤ گے۔
کہوں گا نا کہ چالوس روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔
اچھا ٹھیک ہے، سوار ہو جاؤ، میں اب تمہیں پہنچا دیتا ہوں، راستے میں بات کریں گے۔
انجینئر صاحب
جی،
فروزان فر صاحب آئے ہیں۔
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اپنا کام کریے۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ آپ سے کہ ہم حاضر ہو جاتے، ابھی آپ کی طبیعت پوری طرح ٹھیک نہیں ہے، لوگوں کی نظریں بھی تیز ہیں، کہیں نظر نہ لگا دیں آپ کو۔
یہ کہ تم دادی اما کی طرح بات کر رہے ہو۔
السلام علیکم۔ بعض اوقات تنہائی میں انسان کا دل چاہتا ہے کہ اس کی کوئی خالہ ہو، پھوپھی ہو، کوئی نہ تو ہو، کوئی نہ کوئی۔
زیادہ باتیں مت کرو، ایک اشتہار دے دو پیپر میں۔
اشتہار؟
صاحب
کیا بیکار مال اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے، ابھی تو کافی جگہ اسٹور۔
ایک اشتہار اسٹور کیپر کے لیے، سمجھے؟
صاحب میں تو آپ کے حکم کی تعمیل کر ہی رہا ہوں، کہیں کوئی غلطی ہو گئی کیا مجھ سے؟
نہیں، تم اپنا کام صحیح انجام دے رہے ہو۔ کارخانے کو ایک تجربہ کار اور ماہر اسٹور کیپر کی ضرورت ہے، اس میں ظاہر سی بات رشتہ داری نہیں چلتی۔
میرے چچا نے تمہاری گرفتاری کے وارنٹ لے لیے ہیں اور تم کام کے لیے انٹرویو دینے جا رہے ہو؟
ارے بدقسمت، میں تو اتنا بھی نہیں جانتا کہ کیا کر رہا ہوں۔
فلم کس سے لی تھی، کیسے حاصل کی، یہ بات تمہیں کس نے بتائی؟
یہ دو تین مہینے پہلے کی بات ہے، ایک روز چپکے سے تمہارے چچا کے کارخانے گیا تھا کہ اتنے میں ان کے کمرے سے کچھ سرگوشیاں سنائی تھی۔
صاحب میرے خرچے بہت زیادہ ہیں، اس پیسے سے کام نہیں بنتا۔
مجھے حیرت ہوئی کیونکہ تمہارے چچا چھٹی کے دنوں وہاں نہیں آتے تھے۔
میں اس وقت مشکل میں پھنسا ہوا ہوں۔
ارے अरे नहीं, मुश्किल में मैं फंसा हूँ, वो भी सब लोग तुम्हें छोड़ के चले गए। तुम्हारे साथ कौन गुजारा कर सकता है? तुम्हारे मुंह में तो कोई सोने का चमचा डाले तो भी तुम काट लोगे उसका हाथ।
साहब खुदा की कसम, कोई काम मिलता तो हरगिज आपको जहमत ना देता। जहाँ जाता हूँ मेरी शक्ल और मेरा हुलिया देख कर और इस हाथ को देख कर कोई मुझे काम नहीं देता।
तुम कब तक इस मनहूस लत में पड़े रहोगे, कब तक मुझसे?
दिलावर की बातों से मबहूत हुआ, समझ गया कि उनके दरमियान कोई राज है, इसीलिए कारखाने के बाहर खड़े होकर उनका इंतजार करने लगा। उनके बीच मौजूद राज को जानना चाहता था, पता नहीं क्यों, लेकिन सोचा शायद किसी दिन काम आ जाएगा। तुम्हारे ख्याल में मैं किस लिए यहाँ आया हूँ?
मुझे क्या पता है, शायद हिसाम साहब से लड़ाई हुई है और उसने पेट में घोसा मारा है और अब यहाँ आकर हमें बकरा बनाकर उसके सामने डालना चाहते होगे। अरे जनाब, हम तो अपनी जिंदगी भी नहीं चला पा रहे, हिसाब साहब हमारे लिए सोने की चिड़िया की तरह है। शायद तुम यहाँ हमारा टेस्ट लेने और उसे अपने उस्ताद के लिए ले जाने आए।
लावर साहब, मैंने तुम्हारी फिल्म बनाई है जब तुम साहब को ब्लैकमेल करके मजीद पैसे अटना चाहते थे।
अरे मैं तो डर ही गया था।
लगता है तुम ख्वाब खरगोश से बेदार नहीं होना चाहते। ठीक है तो सोए रहो, जब तक भेड़िया आकर तुम्हें न खा ले। खुद ही देखो, मैंने तुम्हारी वीडियो बनाई है।
साहिब मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, इस पैसे से काम नहीं बनता, खुदा के लिए मेरी मदद करें, कहीं नहीं जाएगा, मैं इस वक्त मुश्किल में फंसा हुआ हूँ।
मुश्किल में मैं फंसा हूँ, वो भी सब लोग तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम्हारे साथ कौन गुजारा कर सकता है? तुम्हारे मुंह में तो कोई सोने का चमचा डाले तो भी तुम काट लोगे उसका हाथ।
ज्यादा मत भड़को, उसकी और भी कॉपी है मेरे पास।
चंद माह पहले जब मेरे पास आए, उसी वक्त मैं समझा कि कोई चाल चलाने के इरादे से आए हो। मुझे बेवकूफ बनाकर हिसाम साहब के पास भेजा कि मेरी फिल्म बना सको। सच में बहुत ही बेगैरत हो तुम।
हुसैन, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। दिलावर साहब का खजाना पूरी तरह खाली हो चुका है। अक्ल से काम लो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो और उस पर अमल करो। तो वादा करता हूँ कि इस लफड़े में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि सारी उम्र तुम मोहताज के सिकने रहोगे।
आखिर इस गद्दारी से तुम्हें क्या मिलेगा?
तुम अपने काम से काम रखो, सिर्फ मतलब की बात। जब तक हुसैन से मुंह बंद रखने का पैसा लेते रहो, उसके बाद मुझसे लेना पैसे मुंह खुले रखने के लिए, ठीक है? क्या कहना है तुम्हारा?
कान खोल कर सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ लड़के। अगर धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा।
फिक्र ना करो, तुम्हारा ख्याल है।
जो बातें तुम लोगों ने कहवे खाने में की थी, अदालत में जज के सामने भी उन्हीं को दोहराना होगा।
ठीक है, लेकिन सिर्फ पेशी के दिन। इससे पहले तुम्हें उसे मिलने का कोई हक नहीं है, ये शर्त दिलावर की है। देखो भैसा, ये तुम्हारे और तुम्हारे चाचा की लड़ाई है, मुझे इससे दूर रहने दो, ताकि कल कोई ये ना कहे कि तुम मेरे इशारों पर चल रहे हो। जिस दिन तुम अपने चाचा के बद मुकाबिल खड़े हो जाओगे, सब कुछ बदल जाएगा। अच्छा है मैं यहाँ ना रहूँ।
ये नहीं हो सकता, अब तुम पीछे नहीं हट सकते। कत्ल का इल्ज़ाम कोई मजाक नहीं है, इसके लिए ठोस दलाइल और गवाहों की ज़रूरत होती है, जिनमें से तुम एक हो। तो तुम्हें रहना होगा, दिलावर को भी रहना होगा, वरना काम आगे नहीं बढ़ेगा।
और उसके बाद क्या? तुम अपने चचा को जेल में डलवा दोगे, उसके बाद हम रहेंगे और सारी उम्र की शर्मसारी और परेशानी। नहीं हो सकता।
इस बिच्छू को तुमने हमारे बिस्तर में डाला है, अब पीछे नहीं हट सकते।
मैंने बुरा किया बता के तुमको, मैं खामोश रहता तो बेहतर था, ठीक है ना?
अगर सच कहते हो तो फिर मुझे दो,
मेरे पास ज्यादा महफूज है।
एक पुलिस वाले को अपने साथ ले जाके उस लड़के को गिरफ्तार करवाओ। माँ बहन या मंगेतर जिस घर में भी हो,
साहब आप समझ रहे हैं कि उस रात मैं और बेहजाद आराम से बैठे रहे? नहीं जनाब, उस रात से अब तक हर जगह ढूंढ रहे हैं। मन हूं उसका पता नहीं जमीन खा गई है या कहां दफा हो गया है। अरे क्या बताएं, एक बार भी नहीं हुआ कि हम अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर सकें, उस लड़के को पकड़कर आपके सामने पेश कर दें, आपसे इनाम ले सकें। लेकिन आप बेफिक्र रहें, मैं हर हालत में ये काम करके रहूंगा। सब यहां दस्तखत कर दी, हमने जो भी सीखा है आप ही से सीखा है।
तुम क्या कह रहे हो?
कुछ नहीं जनाब, हमें अपने पास रखकर कुछ बनने दीजिए। हमारे पास कोई ढंग का काम तो है नहीं। अबू मरहूम की विरासत का पैसा भी इस बिल्डिंग के प्रोजेक्ट की नज़र हो गया, सारा जल गया, और इसी बात पर अपने भाई बहन सब से नाराज़गी हो गई, ताल्लुकात ख़राब हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब तो आप जानते हैं, अब अगर घर दामाद बनने पर मजबूर हूँ। जनाब हमें घर दामाद बनना पसंद नहीं है जनाब, खुदा की कसम जहाँ हम खड़े हैं ये मकाम हमारे लायक नहीं है।
मनुचर, मैंने सिर्फ इतना कहा कि स्टोर कीपर के लिए एक इश्तहार दे दो और तुम इतने घबरा गए।
घबरा नहीं गया जनाब, पुरानी बातें याद आ गई। असल में यहाँ पर दो दस्तखत कर दीजिए। बहन और भाइयों के ताने, ये जो कहते हैं ना कि रिश्तेदार एक दूसरे का गोश्त भी खाएं तो हड्डियां दूर नहीं फेंकते, ये सब हवाई बातें हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल मेरे भाई बहन हैं जो मुसलसल मुझे ताने देते रहते हैं दिन रात।
मनुचर तुम्हें आज क्या हो गया, ओल फोल क्यों पक रहे हो?
हाय जनाब मैं मर जाऊं क्या बताऊं आपके, ओल फोल लग रहा है। आपको तो मेरे दर्द और गम का इल्म नहीं है ना, आपकी तो कोई बहन नहीं है जो मेरी बातों का मतलब सुन। लेकिन हो सकता है वो भी, अलबत्ता मैं जानता हूँ कि नहीं है। मैं ओल फोल बक रहा हूँ क्योंकि इस वक्त उलझन का शिकार हूँ। सब पता है मैं क्यों ये बातें कर रहा हूँ। असल में मैं कहना चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा मुझे आजमा कर देखिए, इस नई पोस्ट मुझे रहने दीजिए, मैं अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा के रहूँगा, अब मैं मेहनत करूँगा।
काबिलियत इंसान के वजूद में होती है ना कि जबान में। हलवा हलवा करने से मुंह मीठा नहीं होता। उठो जाओ, मैंने जो कहा उसे अंजाम दो।
जी जी सही कहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर।
अच्छा तो तुम्हें गुंडा टैक्स चाहिए?
ऐसे कह रहे हो जैसे मैं जबरदस्ती ले रहा हूँ।
नहीं भाई, मेरा हक बनता है।
सर केवल मैं घड़े में छलांग लगा रहा हूँ, तुम्हें तो अपना हक मिल जाएगा। क्या मुझे पैसे और जिंदगी चलाने कोई हक नहीं है?
कितना कितना?
तुम्हें कितना मिलेगा?
मुझे हकीकत मिलेगी, हकीकत।
सादाबाद की जमीनों के अलावा जो कि मिल गई तो अरबों के मालिक बन जाओगे। यहाँ बगल में उतार दो, मैं उतरना चाहता हूँ।
देखो अगर मेरी नजर चाचा की दौलत पर होती तो उनकी बेटी से शादी कर लेता, लेकिन मेरी मुश्किल दौलत नहीं है, मेरा मसला कुछ और है। मसला एक कत्ल का है, मेरे बाप के कत्ल का। अलबत्ता अगर तुम लोगों ने सच बोला हो तो।
बैजाज साहब मेरे हालात ठीक नहीं है, लेकिन आपकी मदद की खातिर मैं हर काम करने को तैयार हूँ, लेकिन उसका पैसा चाहिए।
वादा करते हो कि आखिर तक मेरा साथ दोगे?
तुम्हारा पैसा तो अभी हवा में है, हमारा वादा भी हवा ही में समझूं? वादा करता हूँ मैं और दिलावर तुम्हारे शाना बशाना खड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे उस मकरूर चचा की नाक जमीन पर रगड़ दूं। बेहजाद मुझसे नाराज ना हो, मैं लालची नहीं हूं, लेकिन जिंदगी के अखराज बहुत ज्यादा है।
लेकिन मेरा अकाउंट खाली है।
मैं जानता हूं, सिर्फ ये बताना था कि मेरे हालात आज भी बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, खुदा हाफिज़।